परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
शांति। आज रूहानी क्रांति के सूत्र का 21वां दिन है और आज का सूत्र है रूहानी इंजीनियर। तो सबसे जो सुप्रीम इंजीनियर है वो शिव बाबा है और वो ऐसे अभी इंजीनियर बना रहे हैं। आज की जो मुरली रिवाइज करेंगे वो है 18 जनवरी 1980 ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है, उस दिन की मुरली है और मुरली का सार है स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। आज की मुरली में जो बाबा ने इस मुरली में जो बाबा ने कहा है, बहुत सारे वरदान दिए हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल बातें बताई हैं। इसलिए टॉपिक भी है रूहानी इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर का अर्थ बाबा कहते हैं प्लानिंग बुद्धि, जो कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी जो हम ये माइक में बोल रहे हैं ये भी एक इंजीनियरिंग ही है, ये भी इंजीनियर ने बनाई है। ये जो घर में हम हैं ये भी सिविल इंजीनियर ने बनाई है। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग है। तो बाबा ने कई सारे वरदान दिए आज, जैसे समर्थ भव, योग युक्त, फरिश्ता। तो बाबा हमेशा ही अलग अलग रीति से, बात एक ही होती है लेकिन अलग अलग रीति से समझाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे कभी इंजीनियर बोल के, कभी डॉक्टर बोल के, कभी साइंटिस्ट के रूप में। तो जैसे विंग्स बनी थी तो बाबा ने बोला था कि विंग्स से सिवाएं बढ़ी हैं। तो अभी दुनिया में तो हम ज़्यादातर लोग नाम मान शान के पीछे ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन रहता है, तो इसलिए बाबा भी उसी रीति से उनको ज्ञान समझाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने कहा मुरली में कि जितने समय में आप किसी को मतलब टीवी या रेडियो ऑन करते हो उतने समय में बाबा पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा लेते हैं। तो कितना एडवांस है बाबा का, पहले से ही हमने उसको बनाने में कितना समय लगाया, उसके बाद ऑन करते हैं फिर हम सुन पाते हैं कोई भी न्यूज़, और बाबा एकदम उससे पहले ही पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा लेते हैं। बहुत एडवांस है, हम थोड़ा सा पहुँचने की कोशिश करते हैं उससे पहले बहुत आगे वो पहुंचा हुआ है, और हम लोग उससे ऐसी बातें करता है कि कुछ नहीं पता, जो करते हो आप ही करते हो, आप प्लानिंग करो, आप ऐसा करो, सब सबका रिमोट अपने पास लेके बैठा हुआ है। और वो झूठ मूठ का थोड़ा थोड़ा ना ये देते रहता है उठो, और बाकी सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। फिर थोड़ा सा खुश हो जाते हैं बच्चे, फिर बोलता है ठीक अब शांत हो जाओ, उड़ाता भी है और फिर थोड़ा बैलेंस भी करता है। फिर मुरली में बाबा ने कहा कि आप ड्रेस ऐसा पहनो जो विघ्न प्रूफ हो। तो आजकल जो ऐसे ड्रेसेस जो बनाते हैं इंजीनियरिंग में जो भी है, कि उससे हमको कोई वायरस जैसा भी वायरस जो चल रहा है उसके लिए हम पूरा पहनते हैं गाउन वगैरह सब कुछ, ताकि हमको वायरस अटैक ना करे। फेस मास्क और सारी चीज़ें हैं। तो बाबा कौन से ड्रेस हमको पहना रहे हैं और कौन से वायरस से हमको बचाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो एक स्थूल वायरस है और ऐसे सूक्ष्म कई सारे वायरस हैं जिसको हम जाने अनजाने लेते रहते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि हमेशा विघ्न प्रूफ फरिश्ता ड्रेस पहन कर रहो, तो उससे कोई भी वायरस अटैक नहीं करेगा। और ये भी जो वायरस है इस ये भी स्थूल से ज़्यादा इसमें सूक्ष्म ही है, लोग ज़्यादातर डर के ही हो जा रहे हैं। तो कई लोगों का तो सुन के कि मैं किसी वायरस वाले के कांटेक्ट में आया था, वो सुन के ही उनको फीवर आ जाता है तुरंत। अरे हाँ, एक मैं गया था बीच में दिल्ली, वहाँ पे रिलेटिव थे तो कुछ सब ठीक था। ऑफिस गए, ऑफिस में वो ऐप में देखते हैं, वो ऐप में देखा तो उसने बताया कि आप कॉन्टैक्ट में आए हो, अभी आप जाओ ऑफिस नहीं आना, 2-3 दिन के बाद आना, ऐसे ही जस्ट बोला उसने। कि उसमें दिखाता है ना किसी का कांटेक्ट में आ गए, वो घर पे आए, आते ही उनको फीवर हो गया, फीवर बढ़ गया, उनको जो भी सिम्टम्स है सारे सिम्टम्स आ गए और रात तक अगले दिन टेस्ट कराए पॉजिटिव। वो था पहले से हो सकता था, लेकिन फीवर पहले भी तो आ सकता था ना, अब 2-3 दिन पहले ही कॉन्टैक्ट में आए होंगे, तो जस्ट जब उसने बोला उसके बाद फीवर आना शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्या है, मन का है, चलो स्थूल भी हो सकता था, लेकिन वो जो एक तुरंत अटैक करता है वो मन का ज़्यादा होता है। फिर बाबा ने कहा कि खुशबूदार बनो और खुशबू फैलाओ। जैसे दुनिया में आजकल क्या करते हैं, खुशबू फैलाने की अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, कि कैसे परफ्यूम है और भी कई तरह की चीज़ें, खुशबू तो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कौन सा सुगंध फैल, कौन सी खुशबू फैलाओ, सुख शांति जो हमारे गुण हैं, जो बाबा के गुण हैं, वो उसकी खुशबू फैलाना है। तो कैसे फैलाएंगे, जब हम बाबा को याद करेंगे। कल के वरदान में था शायद कि जैसे सूर्य को सामने से देखते हैं तो उसकी किरणें आती ही है, वैसे बाबा को देखो तो उसके गुण हमारे अंदर आते ही रहेंगे। तो वैसे ही हमें भी बाबा को देखते रहना है, तो उससे उसके गुण और हमारे जो गुण हैं वो इमर्ज होंगे, जो मर्ज हो चुके हैं वो इमर्ज होंगे, तो उससे अपने आप ही हमारे अंदर से सुगंध फैलेगा। कहते हैं ना, जैसे कोई आता है कहीं पे तो उसके आते ही रौनक आ जाती है घर में, खास करके छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जब घर में माँ आती है तो खुश हो जाते हैं, और नहीं रहते तो वीरान से पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्यार है वो बहुत शुद्ध है, छोटे बच्चे का जो बहुत शुद्ध रहता है। तो वैसे ही, या फिर कहीं पे भी, या फिर कोई आ जाता है तो देख के सब मुँह बना लेते हैं कि कौन आ गया, मतलब कोई खड़ूस जा रहे अगर आ जाए तो उसको देख के भाग जाते हैं बच्चे, है ना। तो वो चीज़ें उसको कैसे लाएंगे अपने अंदर, तो वो सुख शांति खुशी इसकी सुगंध फैलाएंगे, इसकी खुशबू फैलाएंगे। तो उसका बाबा कहते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन तैयार करो। तो इंजीनियर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो वैसे हमें अभी स्थूल इंजीनियरिंग तो ख़त्म भी हो जाता है, विनाश होगा तो जितने भी कंस्ट्रक्ट सब कुछ विनाश हो सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म इंजीनियरिंग है ये विनाश नहीं होगी, ये हमेशा साथ में रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बाबा को याद करना है और अपने अंदर वो सारी खुशबूदार गुण धारण करने, बदबूदार नहीं। ये तो बाबा कहते हैं कि चारों तरफ अभी गंध मची है, मतलब बदबू है, तो उसको जैसे बाहर में साइंटिस्ट लोग ऐसे बॉम्ब्स ऐसा ऐसे कुछ बनाते हैं जिससे कुछ डिस्ट्रॉय कर सकें, तो हमें भी ऐसी बनानी है सूक्ष्म में, जिससे जितने भी ये गंध है मतलब दुनिया में सूक्ष्म रीति से उसको हम समाप्त करें। सूक्ष्म समाप्त होगा तो स्थूल भी समाप्त हो जाएगा। जब आत्मा शांत रहेगी तो शरीर भी शांत रहेगा। शरीर में हलचल है अर्थात आत्मा के अंदर हलचल है, वो चाहे सोच का है या फिर बाहरी प्रभाव से प्रभावित है। तो फिर बाबा आया, इस जो ये जो मुरली है इसमें दादी जानकी दादी से मिल रहे थे, तो उनने कहा कि आप तो हो ही मस्त फकीर हो और सेवा में जा रहे थे, कहीं लंदन जा रहे थे तो बाबा मिल रहे हैं। और बाबा ने कहा कि हमेशा किसको, मतलब समझो बाप आगे है और उसके बाद आप, ऐसा। और बाबा देखो, जैसे बाबा खुद चक्कर लगाते हैं पूरे विश्व का, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम साकार में आप द्वारा बाबा घूमता है, तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी निमित्त किसको बना रहे हैं, बच्चों को बना रहे हैं, उनको आगे रख रहे हैं, रिगार्ड भी दिया। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बाप को प्रत्यक्ष तब कर पाएंगे जब आप प्रत्यक्ष होंगे, कि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए आपको खुद को प्रत्यक्ष करना होगा। तो फिर बाबा ने एक और भी बात कही एडवांस पार्टी के बारे में आज की मुरली में, जिसमें दीदी सामने थे और बाबा ने बता रहे थे कि कैसे एडवांस पार्टी वो लोग चीज़ें तैयार कर रहे हैं, गर्भ महल तैयार कर रहे हैं, और वो पूछ रहे मम्मा का और विश्व किशोर दादा, इन दोनों का जिक्र किया बाबा ने कि जैसे यहाँ पे भी सेवाओं में आगे थे, वहाँ पे भी एडवांस में भी वो कृष्ण श्री कृष्ण का जो जन्म है उसके लिए वो निमित्त वहाँ पे बन रहे हैं एडवांस पार्टी में। और फिर वो पूछ रहे हैं एडवांस पार्टी का कि महल तैयार कब करें ताकि जब ये विनाश होगा तब तो नई दुनिया शुरू होगी। तो उधर भी इंजीनियरिंग चालू है, मतलब एडवांस पार्टी की भी इंजीनियरिंग चालू है, उनकी बहुत हाई लेवल की है, उधर चालू हो चुका है अभी तो अब उधर तैयार हो रहा है, बाबा कहते कि उधर तैयार हो रहा है लेकिन इधर विनाश होगा तब वो प्रत्यक्ष होगा, तो उसी का इंतजार है। और बाबा ने कहा कि जो सर्विसेबल बच्चों से बात की तो उसमें बाबा ने कहा कि जैसे जो सीनियर्स हैं तो जो बाकी सेवाधारी या फिर जो भी है उनकी विशेषता देखकर उन्हें उनको उस सेवा में लगाना, उससे क्या, और उनको उमंग उत्साह देना, उससे क्या होता है खुश होते हैं। कोई भी चीज़ अगर देखा जाए, जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको अगर प्यार से कुछ बोलो तो बड़ी जल्दी मान जाता है, और उसको थोड़ा सा ऐसे डांट के बोलो बोलेगा जाओ बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो वैसे ही बाबा भी सिखाते हैं कि आप प्यार से और उमंग उत्साह देकर, जैसे किसी के गुणों को थोड़ी सी तारीफ करो तो और उसके अंदर उमंग उत्साह आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और नहीं तो बोलो कि कुछ नहीं कर सकते तो करता हुआ भी वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जैसे क्रिकेट वगैरह होता है तो लोग एकदम थोड़ा सा शोर मचाते हैं, उससे क्या उनका उमंग उत्साह बढ़ता है, और नहीं रहता है तो कोई भी वीराने से खेलते रहते हैं ऐसे ही जीत हो हाँ टाइम पास। तो वो चीज़ें हैं कि उमंग उत्साह देकर, और दूसरी चीज़ बताई कि जैसे सेवा केंद्र के बारे में बाबा ने कहा कि सेवा केंद्र का वाइब्रेशन, जैसे अगर कोई गर्मी में है, गर्मी से थका हुआ आ रहा है और एयर कंडीशन मिल जाए तो फुल रिलैक्स हो जाता है। अब एयर कंडीशन क्या करता है, जो गर्मी से जो थके हारे हैं तो उनको रिलैक्स कर देता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है थोड़ा सा, तो एयर कंडीशन तो रहेगा नहीं बाद में, अभी भी अगर लाइट कट जाती है तो एयर कंडीशन नहीं रहता है तो फिर सब परेशान हो जाते हैं। तो हमें ऐसा वाइब्रेशन बनाना है मन का वाइब्रेशन, जिससे क्या हो कि, और ऐसा होता भी है, जो पहली बार हम सेंटर पर गए थे तो अलग ही एकदम अलग था, कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था क्या अलग है, अच्छा है या वो क्या है, लेकिन वो एक बहुत ही अलग रहता है, वो कुछ दिन बाद पता चलता है कि हाँ क्या चेंज था उसमें। ऐसे कई लोग अनुभव करते हैं कि सेंटर पर जाते रहते हैं तब और नहीं जा रहे हैं तब, दोनों की स्थिति में और क्या अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। या फिर यहाँ ही लॉकडाउन में बीच में जैसे बंद हो जाता है ना, तो एकदम रिलैक्स अपने हिसाब से उठो, अमृत वेला भी अपने टाइम से होता है, नींद तो एकदम बहुत तो एक टाइम टेबल जो बाबा ने बनाया है वो कहीं ना कहीं, हाँ उसको एकदम कंप्यूटराइज नहीं कर लेना होता है कि मतलब, लेकिन उसको इंजॉय करके करेंगे तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बॉन्डेज नहीं किसी चीज़ से, मुझे अब इतने बजे उठना ही है, अगर बॉन्डेज है तो वो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बंधन हो जाएगा, और वही इन्जॉय कर रहे हैं तो अपने आप ही वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये था, और लास्ट में ब्राह्मण परिवार के बारे में बाबा ने कहा कि विशेषता, ब्राह्मण परिवार में सबसे बड़ी जो विशेषता है, अनेक होते भी एक, एकता से ही क्या होगी, एक राज्य एक धर्म की स्थापना होगी। तो और जैसे अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत लोग योग तपस्या सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा का जो मेन फोकस्ड है दो चीज़, एक तो आप योग और सेवा का, याद और सेवा का बैलेंस, मुरली में स्टार्टिंग में ही कहा बाबा ने, याद और सेवा का बैलेंस, दोनों चीज़ का बैलेंस, ये नहीं बोलते कि सिर्फ याद में ही पड़े रहो सेवा नहीं करो या फिर परिवार से अलग हो के, तो योग तो करने वाले दुनिया में भी करते हैं, दिन दिन रात रात योग ही कर रहे हैं बैठ के, लेकिन बाबा हमें वो क्यों नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ परमधाम ही नहीं जाना है, हमें नई दुनिया की स्थापना करनी है, और नई दुनिया की स्थापना के लिए नई दुनिया में एक राज्य होगा, परिवार होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो परिवार बनाने के लिए पहले से यहीं पे बनाना पड़ेगा, वहाँ तो परिवार ही बनाना होगा, मतलब परिवार का एक बेहद का परिवार आप छोटा परिवार बनाना, बाकी सब बेहद का परिवार बनाना। तो मतलब परिवार का जो नींव है वो तो यहीं से तैयार होगा। तो वो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है, और हम साथ में बाबा ने इसीलिए यहाँ पर रखा है ताकि सब में एक जैसे अलग अलग संस्कार के आए हैं, अलग अलग सबके गुण हैं देखा जाए तो, लेकिन सबको एक ही चीज़ यहाँ पे सीखनी है, और फिर संस्कारों का टक्कर भी होता है तो उससे भी अपने आप को सीखना है, सीख ही रहे ना धीरे धीरे धीरे। इसलिए तो बाबा ने एक जगह रखा है सबको, नहीं तो सब अलग अलग रह के भी योग तपस्या तो कर ही सकते थे ना। एक ही चीज़ है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो कहीं पे भी कर सकते हैं, उसके लिए परिवार में रहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत है क्योंकि हमें नई दुनिया की स्थापना करनी है, और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए अभी से ही उसकी सारी नींव तैयार करनी है। इंजीनियरिंग इंजीनियर और इनसे रिलेटेड और भी कई मुरलियाँ हैं जिसमें बाबा इंजीनियर से बात करते हैं। एक 14 जनवरी 1980 की मुरली है जिसमें इंजीनियर से बाबा बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इंजीनियर अर्थात प्लानिंग बुद्धि, जो प्लान करने वाले हो। और बाबा उसमें कहते हैं कि इतने सारे आए हैं, अगर सब एक एक प्लान बनाएं तो अभी ही विनाश हो जाए ना। प्लान बनाए मतलब नई दुनिया के लिए प्लान अगर बनाते हैं। और दूसरी एक और बात बाबा कहते हैं कि साइंस और साइलेंस दोनों जब जुड़ जाए, जैसे साइंस भी काफ़ी डेवलप कर रहा है लेकिन वो साइलेंस के बिना, मतलब योग के बिना, वो बस स्थूल चीज़ों पे कर रहे हैं, अगर ये दोनों साथ में मिल जाए तो सतयुग में तो साइंस है ही। बाबा कहते हैं सतयुग में साइंस नहीं, ऐसा नहीं है, साइंस इंजीनियरिंग सब कुछ है, वहाँ भी महल बनाएंगे, वहाँ भी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ की इंजीनियरिंग थोड़ी अलग होगी, रिफाइन साइंस होगी। उससे क्या होगा, उससे होगा कि एक तो जैसे आजकल कुछ भी कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो क्या होता है, कितना उससे पॉल्यूशन होता है, कई सारी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, प्रकृति के लिए केमिकल्स होते हैं, प्रकृति को काटते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो सतयुग में साइंस होगी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें नेचुरल होगी और वो एक तरह से स्वतः ही होगी। बाबा ने एक मुरली में कहा, इंजीनियर्स को कहा कि आप विश्वकर्मा हो, मतलब बेहद के इधर सतयुग में बनाने वाले, हाँ ऐसा एक मुरली में कहा। और एक और चीज़ कहा कि जैसे स्थूल में कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री बनती है तो उससे क्या होता है, कईयों को रोज़गार मिलता है, वैसे आप ऐसी प्लानिंग करो जिससे कईयों की सेवा हो, कईयों में, कईयों के पास एक ज्ञान पहुँचे, वो परिवर्तित हो, पतित से पावन बने। तो बाबा ये अलग अलग विंग्स से बातें जो करते हैं उनका यही रहता है कि वो लोगों को हम आगे बढ़ाएं। जैसे अगर साइंटिस्ट से एक बार मिल रहे थे तो बाबा उनसे कहा कि आप अभी इतने आए हो, हर को एक एक लेके आना है, फिर बोले सबकी वीडियो निकालो, ऐसा जो बाबा का नॉर्मल रहता है कि अगली बार देखेंगे कौन कितने ला रहे। तो बस क्या है, एक उमंग उत्साह देने के लिए बाबा बोलते हैं, और उससे उनका भी उमंग उत्साह बढ़ता है कि हाँ देखो भगवान आके हमें, नहीं तो जैसे कल की मुरली में बाबा ने साइंस के घमंड की बात की, साइंस का घमंड है, हाँ जो भी है तारीफ भी करता है, तो मतलब जैसे आजकल के जो साइंस है वो क्या है, थोड़े में ही एकदम ही हो जाते हैं और उससे कितना नुकसान भी होता है। तो बाबा कहते हैं अगर साइलेंस और साइंस का अगर हम बैलेंस करें तो उससे कई सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, और हो अभी धीरे धीरे, अभी लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो चल रही है बहुत सारी चीज़ें। हनुमान का बाबा ने कहा कि आप लोगों का जो है वो हनुमान का मिसल है, जैसे उसी सबके सबके अंदर प्रत्यक्षता का एकदम ये बज रहा है कि कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करें, जैसे हनुमान ने सीना चीर के और राम और सीता को दिखाया था, तो वैसे सभी बच्चों के अंदर वैसा एक दो चीज़ें बोली, एक तो प्रत्यक्षता का और सेवा का, कि ये दो चीज़ अभी होता ही है ना, जिस दिन स्मृति दिवस के दिन तो भाव बहुत ही सबके काफ़ी अपने आप ही रहते हैं उस दिन, एक वो वाइब्रेशन जो होता है ना उस दिन का काफ़ी सबका ही अच्छा रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं आज तो सभी व्यक्त रूप से ही है जैसे वैसा। और हाँ बाबा जैसे, हाँ अभी जैसे क्या होता है कि जैसे स्कैनिंग मशीन होती है तो आते हैं तो किसी के अंदर क्या कुछ स्थूल चीज़ लेके आ रहा है कुछ, है ना, तो वो चेक कर लेता है, वैसे ही बाबा कहते हैं आप ऐसे बन जाओ कि कोई भी आत्मा आए तो आप उसको देख के समझ जाओ कि वो किधर की है, मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, और जिस धर्म की है उसमें स्टैंप लगा के उसको वहाँ भेज दो, फाइनल करो एकदम, और ठप्पा लगा के एकदम फाइनल, और तुरंत करना है। तो फाइनल करने के लिए हमारी बुद्धि कितनी ये होनी चाहिए, सुख महीन होनी चाहिए, किसी को परखने की ये बहुत बड़ी शक्ति है, किसी को परखने की कला है, बहुत बड़ी कला है, तो वो चाहिए। और तो बाबा वही कहते हैं कि जैसे कोई भी आत्मा आती है तो तुरंत हाँ पहचान गए तो फिर उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे कि हाँ क्या करना, पहचान गए कि हाँ इस धर्म के, तो उसके हिसाब से उसको ज्ञान देकर, जैसे बाबा ने एक साइंटिस्ट इंजीनियर उनसे मिलते हुए बोला कि आप उनको सुनाओ, जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर ही हो, लेकिन सहयोगी बने, वो भी उसके लिए भी उसका भाग्य है। तो हमें वो देख के उसके हिसाब से कि कौन सी आत्मा को क्या चाहिए वैसे उसको सुनाना है, नहीं तो अब किसी को ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसको बैठ के हम ज्ञान सुनाएं तो उसको पसंद नहीं आएगा, और किसी को होमवर्क पसंद ही नहीं है और उसको होमवर्क मिल गया, अब वो एक दिन पहले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो है ही नहीं, ढूंढते रहो पेट दर्द हो रहा है। बाबा तो पहले कहते थे ना कुछ भी हो मुरली का टाइम पे उसको बेड पे ला के इधर बिठाओ, तो वैसा ही करना पड़ेगा, बेड से उठा के ला के इधर माइक बोलो, बोलना ही है ना। तो वही है, तो इसलिए अभी हमें नई दुनिया के लिए इंजीनियरिंग, और इसमें कोई पर्टिकुलर डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी जो दुनिया में इंजीनियरिंग करते हैं कहते हैं कि इंजीनियरिंग जिसने कर लिया बाकी उसके अलावा बाकी सब कुछ सीख लेता है, इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब कुछ सीख लेता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग का मतलब या फिर कोई भी जो ग्रेजुएशन जो होता है, जो हॉस्टल लाइफ और ये होता है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, नहीं हॉस्टल में खाना नहीं बनाना पड़ता, मैं तो भूल गया था जाके मतलब अगर रूम पे रहते हैं तो बनाना ही होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पहले तो काफ़ी होता था सीनियर रैगिंग करते थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जूनियर्स का उनका, लेकिन वो भले ही थोड़ा टफ होता है लेकिन रैगिंग तो नहीं बोल मतलब ठीक था, लेकिन जैसे थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं जो सीनियर्स जाने के बाद हॉस्टल में, वो सारी चीज़ें, या फिर जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें सारी बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसमें इवन जो वो फाइल घिसना लकड़ी का, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लोहा को आग में तपाना, ये मतलब एकदम वेल्डिंग करना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और उसके बाद फिर जिसका जो ब्रांच है, जैसे कई सारे ब्रांच है, जैसे सिविल है जो कंस्ट्रक्शन का करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें अलग अलग ब्रांच है, लेकिन फर्स्ट ईयर सबको एक चीज़ सिखाई जाती है, उस फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है, उसके बाद उनका फिर सेकेंड ईयर से अलग अलग डिवीज़न होता है, वो अलग अलग जिसका जो ब्रांच है उसमें वो जाते हैं। और उससे रिलेटेड अगर तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि हाँ एक साल के बाद आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें आपका, क्योंकि जैसे मैथ्स में है, कल या परसों मॉर्निंग क्लास में इंग्लिश क्लास में सुन रहे थे कि जैसे जीरो है, इसका वैल्यू कितना ज़्यादा है, जीरो के बिना पॉसिबल मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है, तो वैसे ही बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो चाहिए ही, तो बेसिक अगर है तो आगे सारी चीज़ों में वो काम आती है, ए बी सी डी पता है तो उसको जैसा शब्द बनाना है बना सकते हैं। तो इसी तरह बाबा हमें कहते हैं कि प्लानिंग करो। अच्छा, बाबा कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, फिर कहते हैं आप नहीं प्लानिंग करो, ऐसा क्यों नहीं, मतलब बाबा कहते हैं कि मैं जितना बताता हूँ उतना ही करो, और फिर ये भी बोलते हैं कि अपनी नई नई प्लानिंग करो, आप ये करो, आप वो करो, और फिर बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उतना ही करो, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि करे गया नई प्लानिंग, मतलब तो नया ही होगा ना, जो बाबा बता रहे उससे अलग, कहने का अर्थ तो यही है नई प्लानिंग। हाँ, ये भी कहा एक मुरली में कि आप करो और फाइनल तो दीदी या दादियाँ करेंगी, तो इसलिए नई नई प्लानिंग्स। और कोई भी मतलब कंपनी हो गई या फिर हॉस्पिटल हो गया तो वहाँ पे सभी चीज़ें होती हैं, फोकस्ड क्या है ना हॉस्पिटल में, फोकस्ड डॉक्टर्स का है, क्योंकि मेन जो फ्रंटियर है वो है, लेकिन बाकी सबका काम भी पड़ता है, बिना मशीन का तो पेशेंट को कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए इंजीनियर चाहिए, ये बिल्डिंग नहीं रहेगी तो हॉस्पिटल कैसे बनेगा, उसके लिए सिविल इंजीनियर चाहिए, ऑक्सीजन लगाना है उसके लिए मैनिफोल्ड चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए आपको आईटी वाले चाहिए, मोबाइल के लिए, तो सारी डिपार्टमेंट सब जगह, कोई भी कुछ कोई भी जो संस्था होती है या फिर कोई भी कंपनी होती है, सभी चीज़ें लगती है, लेकिन फोकस्ड क्या होता है। जैसे कोई बिजनेस है, किसी का मोबाइल का बिजनेस है, तो बोलेगा ये मोबाइल का है दुकान, लेकिन उस मोबाइल में, उस शॉप में तो सारी चीज़ें लगी हैं, एसी लगा है, कमरा बना है, फर्नीचर है, क्या नहीं है, बिना उसके तो वो शॉप चलेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है। तो फोकस जो रहता है, तो फिर हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर नर्सेस फोकस्ड है, क्योंकि मेन उनको सामने झेलना है, हम पीछे रहते हैं, आगे ओपीडी डॉक्टर्स बैठते हैं ओपीडी में, हम पीछे ऑफिस में आराम से बैठते हैं। मैं बायोमेडिकल में हूँ, जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जो पेशेंट्स को लगाते हैं ना, वेंटिलेटर्स वगैरह सारी, तो उसका हम लोग टेक केयर करते हैं, मतलब उसको परचेजिंग से लेके उसका कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके बारे में सबको एक्सप्लेन करना, यूजिंग उसके बारे में सारी चीज़ें, मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग का काम होता है। मशीन बिगड़ा, कुछ गड़बड़ हो गया, तो मतलब उसमें डिपेंड करता है, जैसे अगर उस, जैसे वेंटिलेटर है तो मैंने अगर पहले काम किया मुझे आता है तो मैं करता हूँ, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको जितना पता है करते हैं, कैसे कई सारी पार्ट्स कुछ ख़राब होते हैं तो हमारे पास नहीं अवेलेबल होती हैं, तो हमको मंगाना होता है, तो फिर हम कंपनी वालों से बात करते हैं, या फिर कुछ कुछ हमें नहीं पता है कैसे करना है तो हम उनसे हेल्प लेते हैं, कैसे करते हैं वो गाइड करते हैं हमें, तो हमें ओटी के इंस्ट्रूमेंट, आईसीयू के इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें, मतलब बायोमेडिकल, केमिकल नहीं, मेडिकल है, बायोमेडिकल है, मतलब एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग भी एक डिपार्टमेंट है, वो अलग है, एक्चुअली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अभी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं तो उसके अंदर ही जैसे होता है ना, एक हॉस्पिटल में सारी चीज़ें, वैसे ही एक मशीन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसका भी फ्रंटियर है कि वो हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके अंदर में तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी चीज़ें, सेंसर लगे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, मदरबोर्ड लगे हैं, पावर सप्लाई लगा है, सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उसका एप्लीकेशन है मेडिकल में, इसलिए उसको बायोमेडिकल बोलते हैं। उनका आईटी है, आईटी मतलब जितने कंप्यूटर से रिलेटेड, कुछ कंप्यूटर ख़राब हो गया, टेलीफोन ख़राब हो गया, या फिर कुछ डेटा शेयरिंग करना है, जो भी हॉस्पिटल के डेटा होते हैं वो सारी चीज़ें, या फिर रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। फिर मतलब ये इंजीनियरिंग ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वैसे जैसे यहाँ पे लैपटॉप्स में हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सारा भेज रहे हैं, क्या आईटी और कंप्यूटर साइंस का है, तो ऐसे ही है, वो भी इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग, फायर इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, हाउसकीपिंग इंजीनियरिंग, एक दूसरे से सभी लिंक्ड हैं, और एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं, इसलिए भगवान जो सारे लोगों को इकट्ठे करके ये सिखा रहे हैं ना, इसीलिए एक्चुअली भगवान इसलिए कहते हैं ना कि बाद में जब कुछ गड़बड़ होता है ना तो सामने उनको ही देखना पड़ता है, इसलिए उनको अब भगवान आगे रहो, हमारा टर्न बाद में आता है, ढाल जो रहता है ना उसकी ज़्यादा ये होती है, इसलिए जो घर रिलेटिव्स होते हैं किसको बोलते हैं, थोड़ी इंजीनियर को, अरे इंजीनियर आया था, वो आया था, डॉक्टर, ये डॉक्टर देख रहा है, मशीन फेल हुई तो भी डॉक्टर को ही सुनाते थोड़ी नहीं, इसलिए इसमें एक रीज़न भी है, क्योंकि क्या है, डॉक्टर्स जो होते हैं उनको जैसे मशीन ख़राब हो जाती है तो भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि पता होते हैं कि हाँ, जैसे अगर वेंटिलेटर ख़राब हो गया तो तुरंत एम्बू पे लेना है, या फिर जो अलग है, कुछ चीज़ें पता होती हैं, तो क्योंकि बाकी लोग तो ऑल टाइम पेशेंट के साथ नहीं रहते हैं, जब वो इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ गड़बड़ है तब भाग के जाओ, तो इसलिए नर्सिंग स्टाफ को या फिर डॉक्टर्स को, उनको पता होता है कई सारी चीज़ें जो कि उसका ऑप्शन में जान जाते धीरे धीरे देखते देखते थोड़ा सा पता चल जाता है। हाँ कुछ कुछ जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था, लेकिन बाद में 6 मंथ का मेडिकल बायोमेडिकल का किया था, उसमें हमको 2 मंथ एनाटोमी ये सारी चीज़ें मेडिकल चीज़ें बताई गई थी, क्योंकि उसके बिना आप काम, जैसे अगर हम कुछ भी गलत बताते हैं तो कोई भी है, जैसे अगर मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दूसरा फ़ोन तो मेरे लिए नया है, भले मैंने मोबाइल के बारे में पता है कि मोबाइल ऐसा होता है, उसमें ऐसा नेटवर्क आता है, लेकिन कोई नया मोबाइल देखता हूँ तो उसमें कैसे फीचर्स हैं मुझे नहीं पता, वैसे ही डॉक्टर्स भी हैं, अगर कोई नया वेंटिलेटर है अगर उसके बारे में उनने यूज़ नहीं किया है तो उनको उतना आइडिया रहता है क्या क्या सेट करना है, लेकिन कैसे करना है कुछ होता है सेटिंग्स अलग कन्फ्यूज़ कर देते हैं, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए, मेडिकल टर्म्स पता होनी चाहिए, कि नहीं तो क्या होता है कि हमने कुछ बता दिया हाँ, फिर उनने वैसे सेटिंग्स नहीं हुआ अच्छे से, कई सारी सेटिंग्स होती हैं तो पता नहीं हो अगर कुछ उनने नहीं किया अच्छे से तो फिर वो उल्टा इफेक्ट भी हो जाता है, तो इसलिए मेडिकल का पता होना चाहिए, लेकिन आ जाती है धीरे धीरे मेडिकल का, धीरे धीरे देखते देखते पता चल जाता। अरे हाँ, मैं कंपनी में काम कर रहा था ना, तो एक डॉक्टर डेंटल का कर रहा था तो डेंटिस्ट हाँ एक उनके यहाँ गया था, तो बोल रहे थे कि अच्छा है 3-4 चेयर खराब कर दोगे तो सीख ही जाओगे तो खराब करके मतलब थोड़ा सा पहले दूसरी बार ना। और एक और चीज़ है कि जैसे कई बार ना कोई सीनियर साथ में है, हम सीख रहे हैं सिखाने के लिए, तब वो उतना ही नहीं होता, लेकिन जब अकेले करना होता है, अकेले भेज दिया एकदम कुछ पता नहीं उसके बारे में, और उस समय कर लिया अगर उसको ठीक, फिर फ़ोन पे हेल्प लेके खुद से कर लिया, तो उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें। तो ये हर एक फील्ड में लागू होता है, कहीं पे भी, जैसे कुछ कुकिंग ही करनी है पता नहीं है, लेकिन खुद से एक बार थोड़ा गड़बड़ कर लिया तो दोबारा से वो फिर ठीक हो जाती है, पता चल जाता है कहाँ गलती की। अच्छा, ओम शांति।